अगली आयत को देखेंगे, आयत नंबर 256। ला इकराह फिद दीन, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं। क्यों? इसलिए कि क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गई, बेशक हिदायत गुमराही से जुदा हो चुकी, वाज़े हो चुकी। अब क्या करना है? फ़मई यकफुर बित्तागूती व युमिन बिल्लाही फ़क़द इस्तमसक बिलुरवतिल वुस्का, पस जो कोई कुफर करे तागूत का और ईमान लाए अल्लाह पर, तो बेशक उसने पकड़ लिया मजबूत कड़ा। कैसा है ये कड़ा? लन फिसाम लहा, नहीं ये टूटने वाला। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। इस आयत का पिछली आयत के साथ रब्त है। पिछली आयत में हमने अल्लाह ताला का तारुफ देखा, अल्लाह ताला की मार्फत हमें मिली। अब यहाँ उसी रब के दीन की तरफ लोगों को दाखिल करने की बात की गई। यहाँ लफ्ज़ जो दीन है ना, असल में ये अल्लाह ताला की मार्फत है, अल्लाह ताला के मुतल्लिक वो अकीदा जो आयतुल कुर्सी में बयान हुआ। और हकीकत में ये पूरा निज़ाम ज़िंदगी है जो इस अकीदे पर बनता है। आप कह सकते हैं कि जो अल्लाह ताला के बारे में सही सोचने लग जाता है ना, फिर उसकी ज़िंदगी का निज़ाम भी बदलने लगता है, फिर उसका अखलाक, उसका एतकाद, उसका कारोबार, उसके अमल, वो सारे के सारे वैसे होने लगते हैं जैसे अल्लाह ताला को पसंद है। अब हुआ क्या कि जब अल्लाह की मार्फत हुई तो दिल में ये ख्याल आया, सब को पकड़ धकड़ के, डंडे के ज़ोर पे, गन पॉइंट पे डरा के, धमका के अल्लाह से जोड़ दो। तो कहा ऐसा ना करना, ला इकराह फिद्दीन। क्योंकि जब एक ईमान वाला अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है ना, उसको अल्लाह ताला की मार्फत मिलती है, तो उसका दिल चाहता है कि दुनिया के हर इंसान को अल्लाह से जोड़ दे। और जब आप दुनिया में निकलते हैं तो अल्लाह की बात को मानने वाले तो छोड़ दीजिए, अल्लाह को मानने वाले ही नहीं लोग होते। उस वक्त फिर आप बेबस हो जाते हैं, उस वक्त फिर आप दुआ तो कर सकते हैं, लोगों तक तबलीग के ज़रिए पैगाम पहुंचा सकते हैं, अपने किरदार के ज़रिए इस्लाम का खूबसूरत नमूना बन के उनको इस्लाम से करीब तो कर सकते हैं, लेकिन ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं चल सकती। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान करे, किसी फ़र्द को जबरन मुसलमान बनाना जायज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लम जब मदीना में आए, मदीना एक आज़ाद रियासत के तौर पर बन चुका था, इस वक्त पूरी इजाज़त थी इस बात की कि आप सारे यहूद को जो मदीना में रहते थे ज़बरदस्ती मुसलमान कर देते और अपनी फ़ौजों को भेजते और मक्का और उसके इर्द गिर्द की बस्तियों में जितने कुफार थे उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि जबरी एतात जो होती है ना, वो फ़ायदा नहीं देती। आप लोगों से ज़बरदस्ती कोई काम करवा लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता जब तक उनके दिल उस काम को ना माने। और इस आयत के पीछे एक ख़ास तनाजर भी है कि मदीना के लोग जो थे इस्लाम से पहले, चूँकि वो मुशरिक थे, अगर उनमें से किसी औरत ने कोई मन्नत माननी होती या किसी का कोई काम रुक जाता, तो मन्नत क्या मानते कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा ना, तो हम अपने बच्चों को यहूदी बना देंगे। क्योंकि उस दौर में यहूदी ही एक दीन था जो वैलिड था और इल्हामी मज़हब था। अब कुछ ऐसे जोड़े थे जिन्होंने खुद अपनी मन्नतों से या अपनी बेपरवाहियों से अपने बच्चों को यहूद बना लिया था। अब इस्लाम आ गया, उनको शऊर मिला, समझ आई, अब मुसलमान हुए, तो अब बच्चों का गम आ गया। और वही बच्चे जिनको खुद ही अपनी कोशिशों से यहूदी बनाया था, ये उनको ज़बरदस्ती खींचने लगे कि आओ हमारे दीन पे। अब वो जवान हो चुके थे, तो जैसे होता है ना, इंसान आगे से बोलता है, तो उस वक्त फिर ये आयत आ गई कि अब सब्र करो, ला इकराह फिद्दीन। जिस तरह तुमने अपने बच्चों को बिगाड़ा है, आज अगर तुम्हें दीन मिल गया तो अब उनके लिए भी वही रास्ता इख्तियार करो जो तुम्हारा है। मैं सोचती हूँ कि ये वाक्य सिर्फ मदीना की बस्ती के लोगों का नहीं है, ये हर उस माँ का वाक्य और हर उस बाप का वाक्य है कि जिन्होंने अपनी जवानी और बच्चों की मासूमियत गफलतों में गुजार दी, खुद माल कमाते रहे, मशीनें बनते रहे, बच्चों को बेबी सिटर्स पर डाल दिया, उनको वो कल्चर दिया, उनकी बेबी सिटिंग उसी मीडिया से हुई जहाँ से उनके अफकार बदले। अब अल्लाह ने कुरान दिया, समझ आई अल्लाह कौन है, मार्फत मिली, तो अब क्या करें? अब ज़बरदस्ती नहीं करनी। اب وہ نام کے مسلمان ہیں چاہے دل نہیں اسلام والے، تو اب کیا کرو؟ قد تبین رشد من الغی، ان کے شعور کو بیدار کرو. جس چیز نے تمہیں شعوری اسلام دیا نا، بچوں کو بھی وہی طریقہ دو. یاد رکھیے کہ اگر آپ کے دلوں میں قرآن پاک پڑھ کے سچا اسلام آباد ہے نا، تو آپ کے بچوں کے بھی دل میں اسی طریقے سے آئے گا، آپ کے شوہروں کے بھی دلوں میں اسی طریقے سے آئے گا. جیسے آپ کسی کی بات سن کے نہیں مانتے تھے نا، اس طرح وہ بھی آپ کی بات سن کے نہیں مانیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھروں میں دین آ جائے، اور جو قرآن اب آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی مانیں، تو اس کا طریقہ ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے ان کو بھی اس کتاب سے جوڑنے. اس کتاب میں یہ تاثیر ہے، یہ وہ پانی ہے کہ دل کو لگ جاتا ہے تو دل گل ہی جاتا ہے. ٹائم لگتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، ماحول کا اثر ہے. آپ کی بچے بگڑ چکے ہیں، خدا فراموش ہو چکے ہیں، ان کو آپ کی پرواہ نہیں. راتوں میں رب کے سامنے روئیں، ٹوٹے سحریوں میں مانگے ان کے لیے دعائیں، اور دن کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں نا، اس میں اپنے معمول اور اپنے اخلاق اور اپنی کیئر سے ان کو سکھائیں کہ آپ ایک اچھی ماں ہیں، آپ پیار کرنے والی ماں ہیں، آپ کو ان کی کیئر ہے. اور جب ان کو آپ کی ضرورت ہو نا، رات کو بیٹھے سوتے وقت کھاتے، اس وقت کوئی چھوٹی بات، وقت مقرر کیجئے. ہر وقت نصیحت کا نہیں ہوتا، ہر وقت آپ تانے دے دے کے لوگوں کو بالکل باقی کر دیں گے. آپ دیکھیں کہ کام کرتے ہوئے، جو نیا نیا کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو پہلی دفعہ ذرا سی چھری کا کٹ لگتا ہے تو کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہائے کیا ہو گیا، خون نکل آیا، پٹی باندھ کے بیٹھ گئے جی، کھانا باہر سے آئے گا. یہ ابتدائی دن ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی وقت آتا ہے جب آپ اتنے کھانے پکائیں، اتنے کٹ لگ گئے، پرواہ نہیں، کٹ لگتے جاتے ہیں، آپ کام کرتے جاتے ہیں کیونکہ مہمان آنے والے ہیں. فرق کیا تھا؟ پہلی دفعہ کٹ لگا تھا تو چوٹ پڑی تھی، اب عادت ہو گئی ہے. یہی کیفیت ہمارے تانوں کی بھی ہوتی ہے. ہم جب اپنے بچوں کو ہر وقت کہتے ہیں نا، تو وہ کھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر چوٹ نہیں پڑتی. وہ کہتے ہیں کہ تیرے ماں کی تو عادت ہے، یا بس ماں کی کیسٹ بول پڑے گی، اب یہ ماں کی ٹیپ بول پڑی. کبھی کسی کو اتنا ڈھیٹ نہ کریں، روئیں، رونے سے فائدہ ہوگا، ہر وقت بھی نہ روئیں. یعنی مختلف طریقے استعمال کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دین پہ آئیں، کیونکہ آج کے دور کا یہ جس کو کہتے ہیں نا ناسور ہے، کہ جب گھروں میں تھوڑا سا دین آتا ہے تو باقیوں کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیں. اور اللہ نے کتنا پیارا دین دیا کہ قد تبین رشد من الغی، ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی. رشد راشد راشدہ، اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی. یعنی جتنے بھی غلط راستے ہیں نا، جتنے بھی شیطان کے راستے ہیں، پگ ڈنڈیاں ہیں، وہ صراط مستقیم سے بالکل جدا ہیں. آپ اس آیت کو اپنے لفظوں میں سمجھ لیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے گھر تک جانے کا جو سیدھا راستہ ہے نا، وہ بالکل کلیئر ہے ان سائڈ کے راستوں سے جو آپ کو آپ کے گھر سے دور لے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ اپنے گھر جائیں گے، کسی کو شبہ پڑے گا مجھے کدھر جانا ہے؟ آپ کو اپنے گھر جانے کا راستہ پتہ ہے نا. اسی طرح قد تبین رشد من الغی، طبیعت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے ہر بندے کو جنت میں جانے کا راستہ معلوم ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہوا. یہ راستہ یا یہ ڈائریکشن یا یہ نیویگیشن اللہ نے ہماری روحوں میں ڈال دی تھی. بچہ دنیا میں آتا ہے، اس فطرت پہ آتا ہے، یہ ہے واضح ہونا. پھر کسی کو ماحول اچھا ملا تو وہ سونے پہ سہاگا ہو گیا، اور کسی کو خراب ماحول ملا تو وہ نیویگیشن سسٹم خراب ہو گیا. لیکن اندر موجود سب کے ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، الستو بربکم. اللہ نے واضح کر کے بھیجا کہ دیکھو دنیا میں جاؤ گے تو مجھے مانو گے. پھر کیا ہوا؟ امتحان شروع ہوا. فمن یکفر بالطاغوت، اس راستے پہ قائم رہنے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے طاغوت کا کفر. طاغوت کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر بات واضح ہو جائے گی. طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی جائز حدوں سے تجاوز کر جائے. یہ ڈکشنری میننگز ہیں. طغیانی، طغا اس کا روٹ ہے، توئے غین جا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی. اسلامی اصطلاح میں طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت سے مراد ہر وہ بندہ جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے، यानी बंदगी की हद से ऊपर उठ के खुद आकाई या खुदाबंदी का दम भरने लगे, यानी अल्लाह का बंदा बनने की बजाय खुद का बंदा बन जाए और दूसरे बंदों से अपनी बंदगी करवाए। तागूत कहते हैं, दोहरा देती हूँ कि बंदे का हक क्या है कि वो अल्लाह का बंदा बन के जिए, लेकिन जब बंदा अल्लाह का बंदा बनने की बजाय अपने नफ्स का बंदा बने, अपने माहौल का, अपने मुआशरे का, अपनी ख्वाहिशात का बंदा बने, बल्कि दूसरों को भी अपने पीछे लगा ले, तो वो चीज़ तुग़यानी और सरकशी बन जाती है। ठीक है, अल्लाह के मुकाबले में किसी इंसान की सरकशी के तीन दर्जे होते हैं। इनको लिख ले, फिर अपने आप को चेक करेंगे हम कहें। सरकशी तीन तरह की होती है। पहला मर्तबा क्या होता है कि इंसान लफ्ज़ों से तो माने कि अल्लाह है, लेकिन अमल में फरमाबरदारी ना हो, यानी अल्लाह को माने लेकिन अमलन अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करे। इसको कहते हैं फिस्क, पीछे हम पढ़ चुके युफ्सिकून के लफ्ज़ में। दूसरा मर्तबा क्या होता है कि वो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी से मुनहरिफ हो, यानी फरमा बरदारी भी ना करे और ख़ुद मुख्तार बन जाए, यानी गोया कि ये समझे ही ना कि अल्लाह ताला को मानना भी चाहिए और इसके सिवा किसी और की बंदगी कर ले। पहला क्या था, अल्लाह को मान रहा है लेकिन अल्लाह के हुक्म नहीं मान रहा, फिस्क है। दूसरा क्या है कि ये भी नहीं मानता कि अल्लाह की माननी चाहिए, हम नहीं मानते कोई खुदा है और किसी और की मान ले उसकी जगह, इसको कुफर कहते हैं। ये दूसरा दर्जा होता है। तीसरा मर्तबा इससे ऊपर का है, वो क्या है कि वो अल्लाह ताला का बागी बन के खुद खुदाई के दर्जे पे पहुंच जाए। इस आखिरी मर्तबे को जो बंदा पहुंच जाए उसको तागूत कहते हैं। फिर दोहराऊंगी, पहला दर्जा अल्लाह को माने लेकिन उसकी बात नहीं मान रहा, ये फिस्क है। दूसरा दर्जा, ये माने ही ना कि अल्लाह की माननी चाहिए बल्कि किसी और के पीछे लग जाए, किसी इज़्म, किसी निज़ाम, किसी भी लाइफस्टाइल के पीछे लग गया, खुदा फरामोश होना, इसको कुफर कहते हैं। तीसरा दर्जा क्या है कि फिर इसके बाद कहे अब मेरी मानो, जो मैं कहता हूँ वो करूँ, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम नमाज नहीं पढ़ो, पर्दा नहीं करो, कोई हुकूमत हुक्मरान अपने मुल्क में डंडे के ज़ोर पे लोगों से गलत काम कराए, इस कैफियत को फिर तागूत बनना कहते हैं। और तागूत जो होते हैं ना, ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, बातनी तागूत भी होते हैं और ज़ाहरी तागूत भी होते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ जो बात की कि फ़मई यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करे, ये वही कैफियत है जो हमारे कलमे में ला की है। देखिए, ला इलाहा, नहीं है कोई इला, इस ला की तलवार से सारे तागूतों का सर काटेंगे, फिर समझ आएगा इल्लल्ला। बात समझ रहे हैं, अल्लाह को एक मानना बड़ी बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात यह है कि ला इला, उसके सिवा और कोई नहीं। दुनिया में जितना भी शिर्क हुआ ना, उसमें अक्सरियत का शिर्क क्या था, किसी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला को ना मानो, हत्ता कि फिरौन और नमरूद भी कहते थे कि उसको मानो, लेकिन उनका मसला क्या था कि साथ हमें भी मानो। और अल्लाह को शराकत पसंद नहीं है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि अगर मुझे मानना है ना, तो पहले फ़मई यकफुर बित्तागूत, सारे तागूत तोड़ो। ये तागूत इंसान का अपना नफ्स भी होता है, अना भी होती है, आपकी नींद भी तागूत है जो नमाज के मुकाबले में आ रही है, आपका नरम गद्दों पे बैठना भी तागूत है जो आपको इल्म के लिए बैठने नहीं दे रहा। जब अल्लाह की तरफ इंसान आता है ना, तो सबसे पहले उसकी लड़ाई खुद से होती है, सुस्ती है, सुबह उठने की आदत नहीं, कौन करे, बैठने की आदत नहीं, लिखने की आदत नहीं, याद करने की आदत नहीं। लेकिन जब वो आयतुल कुर्सी का सारा मफहूम जहन में आता है ना, तो बंदा फिर इस तागूत को कत्ल कर देता है, नहीं बहुत मान लिया अपनी, अब कुछ करना है क्योंकि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। जूं ही अंदर का तागूत किल होता है ना, पहला कत्ल हुआ, आप तैयार हैं तो सामने आपके आपके घर वाला खड़ा है। कहाँ चल पड़ी, ये क्या हो गया? जबकि घर वाले ना वो रुकावट बन जाते हैं आपके लिए। ये क्या हुआ, नाश्ता कौन बनाएगा, खाना कौन पकाएगा, और ये अब क्या जिंदगी है, और इस तरह कैसे चलेगा। और वो ये घर के करीबी लोग जो होते हैं ना, ये हिल जाते हैं, आपका वो सारा सिस्टम खराब करते हैं। फिर आप कायल करते हैं, माइल करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, अपना रात दिन कर करा के इनको खुश करते हैं। जो ही ये ताबूत खत्म होते हैं ना, तो आपके बाहर के सर्कल के लोग, आपके दोस्त, तुम्हें क्या हो गया, किधर चल पड़ी, कल तक हम जैसी थी आज क्या हुआ। सारी जिंदगी इंसान ताबूतों को मारते 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 अल्लाह की तरफ जाता है, और इसी का दूसरा नाम जिहाद बिन नफ्स है। नफ्स को मारो, मतलब मुआशरे के साथ जिहाद होगा, इंसान खुद को मनवा लेता है, दूसरे रूठ जाते हैं। और अक्सर लोग जो अल्लाह की तरफ नहीं आए हुए ना अभी, यूमिन बिल्ला, उसकी वजह ये बाहर के लोग नहीं है, अभी अंदर है, समझ रहे। वो कहते हैं ना, जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अभी अंदर की जंजीरें नहीं टूटी। वल्लाही अगर मुझे अपनी कब्र की पहली रात याद हो, तो दुनिया का कोई इंसान मुझे नेकी से नहीं रोक सकता। मैं रोऊंगी, मैं जिद करूंगी, मैं तड़पूंगी, मैं बेचैन हो जाऊंगी, मैं बीमार होके पड़ जाऊंगी घर पे कि मैंने नहीं छोड़नी ये चीज़, इसलिए कि मेरा मामला है। वो कहेंगे जाओ भाई छोड़ो, ये तो दुनिया से जाने वाली है, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। जहां किसी ने किसी को रोका है ना, उसको रोका है जिसके अंदर का तागूत नहीं मरा होता। बीबी आसिया के साथ क्या हुआ था, अंदर का तागूत मरा तो दुनिया का सबसे दौलतमंद और सबसे जालिम शौहर भी रुकावट नहीं बन सका। रब इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्ना, दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह हमारे अंदर के तागूत टूट जाए। अभी हम खुद ही ढीले हैं, हम पूछते ही दूसरों से ये सोच के हैं, क्या ख्याल है करूं कि ना करूं, क्या ख्याल है ये नेकी करें ना करें, क्या ख्याल है ये हराम का बिजनेस छोड़ें कि ना छोड़ें, कौन कहेगा आपको छोड़े। इसीलिए कहा कि पहले यकफुर बित्तागूत फिर यूमिन बिल्ला। तो इसकी कैफियत कैसी होगी, फकद इस्तमसक बिलुरवतिल वुस्का, तो बेशक उसने एक मजबूत कड़े को पकड़ लिया। ये मजबूत कड़ा क्या है, ये इस्लाम के अहकाम है। एक दफा आपको अल्लाह की मार्फत हो गई ना, फिर नमाज, पर्दा, रोजा, हज, ज़कात, ये खेल लगेंगे। ये वो छोटे छोटे लाड नहीं जो आप बच्चों के देखते हैं, जो प्यार हो जाता है तो आप कहते हैं हाय मेरा बच्चा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं ये भी कर लूंगी, ये कौन सी बात है, ये भी कर लूंगी। ये जो छोटे छोटे लाड देखते हैं ना, फिर आपको पूरे दीन का जो नाम है ना, या पूरी शरीयत, वो लाड लगते हैं। ये कोई बड़ी बात है, ये क्या बात है। फिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां करके भी आप कहते हैं अभी तो कुछ किया ही नहीं, जहाँ दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये कि हक अदा न हुआ। ये जो अभी तक हमारी अड़ियाँ चल रही हैं ना, उसकी वजह यह है कि अभी यूमिन बिल्ला नहीं हुआ, और यूमिन बिल्ला आयतुल कुर्सी के जरिए होना था। और इसके रास्ते की रुकावट है तागूत। तागूत का इनकार क्यों नहीं हो रहा, इसलिए कि अभी तबैयना रुश्दु मिनल गई वाली कैफियत नहीं आई। अभी पता ही नहीं जहन्नुम के अंधेरे कितने अंधेरे हैं, और अभी जन्नत की रोशनी और वो हिदायत के रास्ते दिखे नहीं। जिसको एक दफा समझ आ गया तो इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू वाली कैफियत आती है। एक दफा जो रब को रब कह दे, फिर कोड़े पड़े, फिर उसको पत्थरों पे लिटाया जाए, फिर उसको जलते हुए तेल में फेंकते, वो कहते हैं नो प्रॉब्लम। यही कैफियत है लन्फ़िसाम अल्लाह की, अब नहीं ये टूटेगा इंशाल्लाह, ये अपना बंदा है, ये घर का बंदा बन गया। ये कैफियत जब बंदे की बनती है ना, फिर बाकी चीजें अल्लाह उसकी इतनी नहीं देखता। हम तो सारी जिंदगी फिकी बहसों में पड़े रहते हैं ना, हाथ इधर किए थे कि उधर किए थे, क्या किया था वो। अल्लाह को जो बंदे से मतलूब है, वो ये मतलूब है कि फकत दिस तम सका बिल और वतिल वस्का, ये बंदा मेरा बन जाए। कुछ लोग इतने काबिल एतमाद हो जाते हैं आपके लिए, आप कहते हैं कि बस अब ये कुछ ना भी करे तो मुझे यकीन है कि ये बंदा अपना है, क्योंकि इसने यकीन दिला दिया है कि आपके साथ सिंसियर है, मुखलिस है। फिर आपका दुख सुख राज हर चीज उसके लिए आपके लिए सही होती है। लेकिन अगर ये कैफियत ना हो ना, तो लोग आपकी खातिरें करें, खिदमतें करें, आप खुश नहीं होते। यही कैफियत उन लोगों की है जो फीकी नमाजें पढ़ते हैं, जो रूखे सदके करते हैं, दिल नहीं जुड़े हुए, दिल अंदर से भी माशाल्लाह वही है, सुबह उठते ही पहले अल्लाह की नाफरमानी करके बैठते हैं कुर्सी पे कि नहीं अपनी शक्ल नहीं खराब कर सकते, नहीं अपना गेटअप नहीं बदल सकते। ये कोई गेटअप की बातें, ये क्या बातें हैं, क्योंकि मेरा रब मुझसे राजी होगा। और जब ये कैफियत होगी तो वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला। किसी के अजर को जाया नहीं करेगा। बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय अगर इंसान छोटे छोटे अमल भी कर लेगा ना, तो अल्लाह ताला उसको भी खोल के रख देगा। जब ये कैफियत आ जाती है ना, तो इसका एक अमली इजहार होता है, उसका तस्करा अगली आयत में, अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त बन जाता है। ये अब उसका बिल्कुल अगला नतीजा निकल रहा है। पहले अंधेरे छटे, तागूत का कुफर हुआ, अल्लाह पर ईमान हुआ, मजबूती से दीन के हलके को थाम लिया। और दीन का हलका फिर वही कहूंगी, फिक्ही बहसों का तरीका नहीं, हकीकत में दीन। लनफिसाम अलहा, इस्तकामत आ गई, ये यकीन हो गया कि अल्लाह के रास्ते में जो मुश्किल आ रही है, जो कुर्बानी दे रहा हूँ, अल्लाह समीउ अलीम है। अब जब ये कैफियत आती है ना, तो ये अल्लाह से विलायत की कैफियत होती है। फिर बंदा अल्लाह का दोस्त बनता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं। इस पे बहुत सारी रिवायतें आपको मिल सकती हैं कि जब एक बंदा सच्चा हो जाता है, तो फिर अल्लाह को उससे मोहब्बत होती है, फिर जिब्राइल को उससे मोहब्बत होती है, फिर आसमान वालों को उससे मोहब्बत है, और फिर ज़मीन में उसके लिए मोहब्बतें हैं। बस लोगों ने ये सारे मरहले जो पिछली आयत में आपके सामने रखे, इसको काट के ना, तो अल्लाह की विलायत के लिए ओछे हथकंडे इख्तियार किए। आज भी लोग कहते हैं वलीउल्लाह बनो, क्या है, वहां बैठ जाओ कोने में और अल्लाह हू का विर्द करो 1001 बार, फिर उसके बाद एक टांग पे खड़े होके तो कुछ और पढ़ो। ये जो विलायत के दर्जे हैं ना कुछ नामों के साथ, वो इससे शॉर्टकट है। दुनिया में रहते हुए नहीं, अलग कोनों में चले जाओ और बस अल्लाह के नाम की तस्बीहें जपो। नहीं, जब आप अपने फराइज, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दीन के अंदर रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको तारीकियों से, जहालत की तारीकियों से निकाल के हिदायत की रोशनियों पे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अच्छी बीवी कैसे बनना है, अच्छी बेटी कैसे बनना है, यानी आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद क्लियर होती है, नूर आता है, रोशनी आती है, और आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आता है। फिर जब आप ऐसी कैफियत में आते हैं, तो अल्लाह आपका दोस्त बनता है। और अल्लाह के किसी के दोस्त बनने की अलामतें क्या हैं? पहली बात, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अपने लिए चेकलिस्ट बनाएं, क्या अल्लाह की दोस्ती मुझे मिल गई है? पहली बात, क्या मैं दिन ब दिन अंधेरों से रोशनियों की तरफ आ रही हूँ? देखिए, जुलुमात जमा है और नूर वाहिद है, इसलिए कि जहालत के अंधेरे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हिदायत का चिराग बस एक ही है, और वो अल्लाह का दीन है। कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि अल्लाह की ज़ात एक है ना, तो नूर एक ही होगा। दो खुदा नहीं है, और तीन भी नहीं है, और बहुत से भी नहीं है। इंसान हर दिन जहालत से निकलता है। चेक करें, क्या आपकी नमाज अब बेहतर हो रही है? गोया कि आप नमाज की मिस्टेक्स और खामियों के अंधेरों से निकल के सही तरीके की नमाज पढ़ने लग गई। आपके मामलात घर वालों से ठीक हो रहे हैं? आपका इखलाक बेहतर हो रहा है? ये जो किरदार की बेहतरियां दिखती हैं ना, ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत होती हैं। आपके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं अपने घर वालों से? उनके दिल में आपके लिए जगह और आपके दिल में उनके लिए मजीद जगह बनती जा रही है? कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि दीन पढ़ के आप घर वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे हैं, कुन छुरी तो नहीं बन रहे? गलत होगा ये। आप इतने सॉफ्ट हो जाएं कि घर वाले वाकई कहें कि वाकई अंधेरों से रोशनी की तरफ आ गए। ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है, और अगर ये अलामत जिंदगी में नहीं दिख रही ना, तो मान जाइए कि अल्लाह से दोस्ती का दावा झूठा है। इसके बरक्स वल्लज़ीना कफरू, अभी भी कुफर है, सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा है जहाँ से शुरू हुए थे। ये सारे रास्ते के मरहले ख़त्म हैं, कुफर पे ही हैं। नतीजा क्या हुआ? औलिया उहुमत तागूत, उनके औलिया तागूत बन जाते हैं। अल्लाह वली बना, वाहे था, और जमा है औलिया। आप एक सजदा छोड़ते हैं ना, तो हज़ार सजदे करने पड़ते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। एक शेर भी है ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, दिलाता है आदमी को हज़ार सजदों से निजात। यानी खुलासा ये है कि एक रब के आगे नहीं झुकेंगे, तो बहुत सारों के आगे झुकना होगा। यही होता है, जब हम एक अल्लाह के नहीं बनते ना, तो हमें बहुत सारों का बनना पड़ता है। एक अल्लाह को खुश नहीं करेंगे ना, तो बहुत सारों को खुश करना पड़ेगा, और अल्लाह ताला तो बड़ी जल्दी खुश हो जाता है, लोग नहीं खुश होंगे। पिछली ज़िंदगी पर नज़र डाल के देखें, आपने कितनों को खुश करने की कोशिश की, हो गए हैं सारे खुश? ये आपका ख्याल है कि वो खुश हो गए हैं, आप एक बात उनकी ना मान के देखें, सारी पिछली कीकराई आपकी हाथ में रख देंगे। हालांकि अल्लाह ऐसा नहीं है, एक दफा अल्लाह किसी से खुश हो जाए ना, तो फिर उसकी बड़ी बड़ी गलतियों खामियों को कहते छोड़ो छोड़ो, इनको छोड़ो, ये अपने हैं, इन्होंने बदर में जंग कर ली है, ये अब कुछ भी करें खैर है, इन्होंने अब मुश्किल में इस्लाम का साथ दिया, अब ये कुछ भी ना करें है नबी, तुम छोड़ दो, मेरा इनका मामला है। फिर अल्लाह बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर देता है। लेकिन इसके मुकाबले में जब कुफार और तागूतों से दोस्ती होती है, तो युखरिजू ना हुम मिन नूर इला जुलुमात, पहला तो असर ये है कि उनका नूर से ताल्लुक काट दो, रोशनी से ताल्लुक काट दो, अल्लाह की किताब से इनको दूर करो, छुड़वा लो इनकी किताब। और आप देखिए 98% लोगों का यही हथकंडा है, जब वो देखते हैं ना कि कोई किताब से जुड़ गया और आप जिंदगी में चेंज आने लगी है, तो सबसे बड़ा फैसला ये है कि इसका पढ़ना छुड़वा दो, युखरी कट ऑफ करो, इसकी बिजली के तार को काट दो, ताकि जो रोशनी इसकी जिंदगी में आ रही थी और हमारा घर रोशन होगा, हमें नहीं अभी रोशन करना। और आपको पता है लोग क्यों रोशन नहीं करना चाहते? क्योंकि जब लाइट चलती है ना, तो सारे नक्स दिखते हैं, गंदगी दिखती है, आपकी बिखरी हुई चीजें, आप अंधेरा करके बड़ा रोमांटिक माहौल बना के बैठे थे, बड़ा अच्छा लग रहा है, जो कि बल्ब जलेगा फर्नीचर पे पड़ी हुई मिट्टी भी दिखेगी, ये नहीं देखना चाहते अभी लोग। उनको आपके कुरान से कोई नक्स नहीं, उनको सवाब से भी कोई बैर नहीं, मसला ये है कि लोग अभी अपने नक्स नहीं देखना चाहते। काट दो, फिर वापस कर दो, लाइट बंद कर दो, यही इलाज है सफाई करने का। और कुछ लोगों का मियार ही होता है सफाई का, लाइट ही बंद रखो। अल्लाह ताला कहते हैं कि औलाइक असहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये आग में रहने वाले हैं और ये इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में ना करे। तागूत का इनकार किसी इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए, यहाँ तक यानी वो एक अंदाज पूरा हुआ कि जहाँ बात ऊपर तक जाती है। अब सबक के अगले हिस्से में तीन तागूतों से अल्लाह ताला हमारी मुलाकात करवाएंगे। यहाँ तक तिलावत सुनते हैं और चुपके चुपके अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे तौफीक दे दे कि मैं तागूत का इनकार करके तुझ पे ईमान ले आऊँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ज़ाया कर दी है और आगे पता नहीं इतने दिन हैं भी कि नहीं।
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون